الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناسيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وهمي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی خاص نظر اور اللہ کی خاص توفیق سے ہم آج کے قرآن کے جو لیکچر ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو ہم کیا پڑھنے چلے ہیں؟ قرآن. تو قرآن جو ہے یہ رحمان کے وزن پر ہے. قرن اس کا روٹ ہے قاف را اور حمزہ. قاف را اور حمزہ روٹ، یعنی اس کی بیس. یہ ورڈ بنا کس سے ہے؟ کیونکہ اگر جیسے ہم جب پڑھیں گے نا قرآن مجید کو، تو بعض الفاظ بہت بڑے بڑے نظر آئیں گے. تو جب اگر ہمیں اس کی بیس، اس کا روٹ، اس کا مادہ، عربی میں اس کو مادہ کہتے ہیں، انگلش میں روٹ کہتے ہیں نا، تو جب اور اردو میں اصل، تو جب ہمیں اس کی اصل پتہ چل جائے گی نا، تو رٹا نہیں لگانا پڑے گا. سمجھ سے پتہ چل جائے گا کہ اصل اس کی یہ ہے، تو پھر اس سے یہ معنی نکل سکتے ہیں. تو قرآن کا لفظ جو ہے یہ قرن سے نکلا ہے، قاف را حمزہ، اور اس کے معنی ہیں پڑھنا اور مطالعہ کرنا. کوئی تحریر جو بھی پڑھتے ہیں ہم، یا کتاب پڑھتے ہیں یا تھوڑا سا پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے بھی قرن، قاری، قاری پڑھنے والا ہے نا، قراءت. تو قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، کیونکہ قرآن کے وزن میں مبالغہ پایا جاتا ہے، ریپیٹیشن ہے نا. قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. اچھا، قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں جو خاص بات ہے کہ قرآن کس پر لکھا گیا، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ انسان ہے. اس کا ٹاپک کیا ہے؟ انسان ہے. اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ کہ فلاح اور ناکامی جو ہے، یعنی فلاح اور خسران. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ سکسیس کو کہتے ہیں. اور خسران کسے کہتے ہیں؟ فیلئر، ناکام ہونے کو کہتے ہیں. یعنی کون سکسیسفل ہو سکتا ہے اور کون فیلئر میں شامل ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر کامیابی کی کوالٹیز بھی بتائی گئی ہیں، اور جو کامیابی کی کوالٹیز کو فالو نہیں کرے گا، پورا نہیں کرے گا، تو وہ خسران یعنی فیلئر میں شامل ہو جائے گا. تو قرآن کا سینٹرل آئیڈیا، اس کا مین تھیم کیا ہے؟ کہ ٹاپک انسان ہے. انسان کے گرد یہ گھومتا ہے پورا قرآن، اور اس کی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان تو کیا، کون سے طریقے اختیار کرے تو کامیاب ہو سکتا ہے، اور کون سے طریقے اختیار کرے گا تو ناکام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید جو ہے اس کی ایک خاص بات کیا ہے؟ کہ قرآن مجید جتنا ہم اس کو پڑھیں گے، کھولیں گے، اتنا زیادہ تیزی سے آتا چلا جاتا ہے. کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، بس تھوڑی سی یعنی اخلاص، نیت اور محنت کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور قرآن مجید میں جب آپ صورتیں پڑھتی ہیں، دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، کچھ پہ مکی لکھا ہوتا ہے، کچھ پہ مدنی. آج جیسے ہم سورت فاتحہ پڑھنے والے ہیں، تو اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ آپ کھولیں، آپ کے پاس قرآن ہے نا، سب لوگ اپنا قرآن کھول لیں. تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ مکی سورت لکھا ہوا ہے. تو یہ مکی سورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں. تو سورہ مکی اور مدنی کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی دن لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کی تفصیل ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ کسے کہتے ہیں. عربی زبان میں سورہ سین ورا روٹ ہے. سین ورا اس کے معنی دیوار کے ہیں. سین ورا اس کے معنی ہے اونچی اور بلند دیوار, اونچی اور بلند دیوار جسے پھاند کر اندر نہ داخل ہو سکے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کسی کوئی قلعہ ہے, کوئی احاطہ ہے, اس کے باہر جو ہے وہ کیا ہے کہ دیوار بنی ہوتی ہے, تو اس کے ذریعے سے ہم پھر اس کے اندر نہیں جا سکتے. تو اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی یہ دیوار ہے تو سورت, یعنی تو اصل میں ہر سورت جو ہے وہ بولیے ہر سورت دیوار کی طرح قرآن کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہر سورت دیوار کی طرح قرآن کو جو ہے تحفظ میں لیے ہوئے ہے, قرآن کے ساتھ ہے. تو جیسے دیوار کسی کی سراؤنڈنگ کر کے اس کی حفاظت کرتی ہے نا, تو ہر سورت سورت کا ایک نام ہے اور وہ جو ہے وہ دیوار کی طرح اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہر سورت کا اپنا ایک نام ہے. اچھا سورتوں کے نام کہاں سے آئے؟ سورتوں کے نام جو ہیں یہ جسٹ سمبل بھی ہیں, ضروری نہیں کہ وہ پوری سورت اس ٹاپک پر ہو, ایسے ہی بس علامت کے طور پر, سائن کے طور پر. جیسے سورت البقرہ, تو سورت البقرہ جو ہے ایک کو گائے پر ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہول سورہ جو ہے وہ گائے پر ہے, نہیں, بس اس میں تھوڑا سا ایک رکوع دو تین رکوع اس کے گرد چلتے ہیں, باقی ڈفرینٹ جو ہے نا رولز ریگولیشن ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں. اچھا دوسری یہاں بات کیا ہے کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو کہ پورا اس کا ٹاپک ہے, سم ایسی بھی ہیں, جسٹ لائک سورہ یوسف, اور سورہ سورت یوسف کے گرد جو ہے, سورت یوسف ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے. تو اس طرح صورتوں کے نام کی دو قسمیں ہو گئی, کچھ سائن کے طور پر ہیں کہ ایسی نشانی یاد رکھیں کہ اس کے اندر یہ واقعہ یا یہ انسیڈنٹ ملتا ہے, اور کچھ جو ہے وہ پورا اس کا ٹاپک ہے, عنوان بن جاتی. ٹھیک ہے. اچھا اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ تعوذ. تعوذ. اچھا اس کا روٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ عین واو زال, یہ نوٹ کر لیں. تعوذ جو ہے اس کا روٹ ہے عین واو زال, اور اس کے معنی کیا ہیں؟ پناہ مانگنا. تعوذ کے معنی کیا ہیں؟ پناہ مانگنا اور حفاظت میں آنا. اس کے معنی کیا ہیں؟ پناہ مانگنا اور حفاظت میں آنا. جیسے ہم کس یعنی بری چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں, اور کس کی حفاظت میں آتے ہیں؟ اللہ کی حفاظت میں, یعنی کسی سے التجا کرنا, کسی کے دامن رحمت میں جگہ پانا. تو ہم اللہ کے دامن رحمت میں جگہ پاتے ہیں, جگہ چاہتے ہیں, اور شیطان سے اور ایسی چیزیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ہم اس سے اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگتے ہیں. پھر جو ہے اس ہم تعوذ جو ہے یہ کیوں پڑھا کریں؟ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید سے جو ہے اس کی دلیل ملتی ہے. اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو آپ قرآن مجید کھول کر بھی یہ بات دیکھ سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے, یا آپ چاہیں گی تو گھر جا کے بھی پھر آپ کھول کے دیکھیں گی کہ تعوذ جو ہے اس کو ہم کیوں پڑھتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا پڑھنا شروع کریں, جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں, تو ہم اس وقت جو ہے شیطان سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آیا کریں, اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھیں. تو یہ سورت نمل کی آیت 98 ہے. تعوذ جو ہے جہاں ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ آپ تعوذ پڑھا کرو, یہ سورت نمل کی آیت 98 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَعْتَ جب تم تلاوت کرو, جب تم قرات کرو الْقُرْآنَ قرآن کی, فَاسْتَعِذْ تو پناہ میں آ جایا کرو بِاللَّهِ اللہ کی، یعنی اللہ کی حفاظت میں آیا کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو کہ رجیم ہے. تو تعوذ کے اندر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ کیوں پڑھتے ہیں، قرآن نے کہا، اللہ نے حکم دیا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، ہے نا. تو یہ دلیل ہمیں یاد کر لینی چاہیے. کیوں یاد کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ اہم ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم یہ ہر کام کیوں کرتے ہیں. اور جب دلیل یاد کریں گے تو پھر کیا ہے کہ آپ کو سکون بھی ہوگا کہ میں کوئی کام بھی قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہیں کرتی. تو ہم ایسے ہی نہیں اعوذ باللہ پڑھتے، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا، تو پھر ہم اس لیے جو ہے یہ پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے، کیونکہ آپ بھی پڑھتے تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب غصہ آ جائے تب بھی کہا کہ تعوذ پڑھو. کیوں غصہ کیوں آتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے آتا ہے. شیطان کس سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے پیدا کیا گیا. غصے کے مٹانے کے طریقے کیا ہیں؟ کہ آپ وضو کر لیں، آپ نہا لیں، پانی پئیں، آپ بیٹھ جائیں گے. ہمیں حدیث سے پتا چلتے ہیں نا. تو تعوذ، سمجھ آ گئی اس بات کی؟ آپ جا کے آیتیں گھر میں دیکھ سکتے ہیں، ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ تعوذ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شیطان لفظ آیا ہے نا. شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان کا روٹ دو ہیں، ایک تو شتن ہے، شین توا نون، اس کا مطلب ہے دور یا دوری. جیسے کوئی بھی ورڈ میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے شیطان، شین یا تو نون تو زیادہ بڑا ہے، تو ہم اس کا روٹ دیکھیں گے، اس کا روٹ ایکچوئل یہ ورڈ کیا ہے، شین تو نون. تو اس سے کیا ہے کہ پھر بہت سے ورڈ بنتے ہیں. تو جیسے شیطانی کام نہ کریں، شیطان، تو شیطانی یا شیطان، ہے نا، شیطانیت، تو یہ اسی سے ملتے جلتے ورڈ ہے. بے سب کی پھر سیم ہی ہے شتن، ٹھیک ہے. شتن کے معنی کیا ہے؟ دوری. تو شیطان جو ہے یہ نیکی سے دور ہے. شیطان کو پھر شتن کیوں کہتے ہیں؟ یہ نیکی سے دور ہے، یہ انسانی طبیعت سے دور ہے، یہ انسان کی بھلائی سے دور ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روٹ ہے شین الف اور توا. شین الف توا، الف شین، شین الف شاہ لکھ لیں، شین الف شاہ سات توے لکھ دیں، شات. اس کے لفظی معنی ہے غصے سے جل جانا. اور شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تیزی ہے اس کے اندر نا، حرارت ہے، گرمی ہے. تو جب غصے میں ہوتا ہے تو انسان کے اندر حرارت ہوتی ہے، ایک گرمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو شیطان کے دو روٹ ہیں، شین توا نون اور شین الف توا. آگے ہے رجیم. رجیم جو ہے راجیمیم، رجم پتھر کو کہتے ہیں، جس کے معنی ہے رجم کرنا، پتھر مارنا، سنسار کر دینا. تو یہ ہے، تو یہ ہمیں پتا چلا کہ ہم تعوذ کیوں پڑھتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ تسمیہ، تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب مل کر پڑھیں، الرحمن الرحیم. اچھا، اس کے لیے یعنی یہ جو بسم اللہ ہے نا، یہ ہمیں اس کی آیت ہے سورت نمل کی آیت 30. تب اس کی دلیل کیا لکھی تھی؟ کون سی سورت کی ہے؟ نہیں سوری، سورت نحل. میرے کہنے میں فرق پڑ گیا. پہلی جو ہے سورت نحل کی ہے، نون ہا لام، سورت نحل 98. اور یہ جو بسم اللہ کی دلیل ہے نا، یہ سورت نمل ہے، نون میم لام. نحل کسے کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. نمل کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی کو کہتے ہیں. تو اب یہ یاد کر سکتے ہیں اس طرح کہ جو شہد کی مکھی والی سورت ہے سورت نحل، اس میں تعوذ کی دلیل ہے. اور جو تسمیہ کی دلیل ہے، یہ سورت نمل کی آیت 30 ہے، جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے نام جب ایک خط بھیجتے ہیں تو خط کے شروع میں کہتے ہیں انہو من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. پھر ساتھ ہی کہتے ہیں وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ بے شک اس کی طرف سے ہے، اس جو کہ یعنی اللہ کے نام سے ہے، جو بڑا رحم کرنے والا اور رحیم ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی قوموں، پہلی امتوں پر بھی نازل ہوئی، اور وہ لوگ بھی بسم اللہ سے اپنے کام کو کرتے تھے. جیسے انہوں نے خط کے شروع میں بسم اللہ لکھا، تو ہم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कब पढ़ते हैं? इस्लाम हमें ये फायदा सिखाता है कि जब भी हम किसी काम की इब्तदा करें तो हमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो है वो पढ़नी चाहिए। इसके पढ़ने से क्या होता है कि आपकी एक इंटेंशन बन जाती है, आपकी एक नीयत बन जाती है। और जो लोग भी अल्लाह के नाम से अपने किसी काम को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उसमें अल्लाह की रहमत शामिल हो जाती है, उसमें शैतान जो है वो हिस्सा नहीं पाता। फिर दूसरी अहम बात यह है कि बुरे कामों से हम बच जाते हैं, जो भी गलत काम है हम उससे बच जाते हैं। फिर इसका तीसरी तीसरी बात यह है कि जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो वो सोचता है कि मैं जो काम करने जा रही हूं वो ठीक है कि गलत। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वो मतलब गलत काम करे और फिर बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर उसको कुछ शर्म आती है, उसको कुछ हया आती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं यानी अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला और रहीम है, तो फिर इंसान क्या करता है कि अपने चेहरे को, अपने रुख को अल्लाह की तरफ करता है, तो अल्लाह भी अपना रुख इंसान की तरफ करता है। इंसान जब अल्लाह की तरफ मतवजो होता है तो अल्लाह भी इंसान की तरफ जो है वो मतवजो होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि कुरान किसे कहते हैं, सूरतों की दो किस्में हैं, मक्की और मदनी। तीसरी चीज हमने ये पढ़ी कि सीन वौरा सूरत के मानी क्या हैं। फिर इसके बाद हमने अगली बात ये पढ़ी कि तावुज क्या है और क्यों पढ़ा जाता है, और फिर तस्मिया और इनके दलाइल और जो इनके अंदर मुश्किल अल्फाज थे हमने वो पढ़े। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है अब बिस्मिल्लाह जो है पढ़कर हम क्या करते हैं, सूरत अल फातिहा जो है इसका आगाज करते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سورة الفاتحة. فاتحة جو ہے इसके इसका रूट है फाताहा, और इसके मानी है खोलना, खोलना। जैसे कोई चीज बंधी हुई है ना, अगर कोई चीज बांधी हुई है उसको खोल दें, जैसे आप कहती उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, आप कहती हैं इफ्तहल बाब, इफ दरवाजा खोल, इफ्तहल बाब दरवाजा खोल, तो फताहा खोलना है। ठीक है, तो किसी भी मुश्किल चीज को, उसकी मुश्किल को दूर करना, उसके लिए भी फतह का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे फतह हासिल हो गई तो उसके लिए भी लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम जो है सबसे पहले इसका जो है वो लफ्जी तर्जमा जो है वो पढ़ेंगे। तो लफ्जी तर्जमा हम तअव्वुज से ही शुरू करते हैं। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अऊज़ु के मानी है मैं पनाह मांगती हूँ। बिल्लाही सात नाम अल्लाह के, यानी सात अल्लाह के। आऊजु मैं पनाह मांगती हूँ, ये जो आ है ना, अगर इसकी जगह नून लगा देंगे ना तो हम के मानी देता है। जैसे आऊजु है ना, मैं पनाह मांगती हूँ, अगर हम नाऊजू कहेंगे ना, हम पनाह मांगते हैं। मसलन हम आप बहुत से लोग बैठे हैं, आप दुआ मांग रहे हैं, तो आप ये वर्ब है इसको आप चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जब समझ आएगी तो फिर आप चेंज कर सकती हैं। तो आऊजू मैं पनाह मांगती हूँ, नून लग जाएगा तो क्या है, नऊजू हम पनाह मांगते हैं। ठीक है, तो आऊजू बिल्लाही बा जो है ना, बा इसके मानी है सात। बा तीन मानी देता है, एक इसके मानी है कि किसी चीज के साथ, दूसरे इसके मानी है कि किसी से मदद लेना, और तीसरे है कि किसी से बरकत हासिल करना। ये तीन मानों में इस्तेमाल होता है कि किसी के साथ, किसी से मदद लेना, किसी से बरका लेना। तो आप ऐसे लिख सकती हैं, सात प्लस बरका प्लस मदद, है ना, और बा लिखकर। तो यहाँ पे हम आमतौर पे क्या कहते हैं, अल्लाह के नाम के साथ, है ना, अऊज़ु बिल्लाही। मैं पनाह मांगती हूँ साथ अल्लाह के, मिन से शैतान, शैतान और रजीम, रजीम के माने क्या है, मारा हुआ, दुत्कारा हुआ। इस बा सात, इस नाम सात नाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है ना, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के शुरू में क्या आता है, बा सात, इस नाउन को कहते हैं नाम, सात नाम, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह जो है ये अल्लाह का जाती नाम है, अल्लाह के, ये अल्लाह के नामों, अल्लाह के 99 नाम है ना, 99 नामों में सबसे बड़ा और सबसे जामे जो है ना ये अल्लाह है। बाज उलमा ये कहते हैं कि ये इसमें आजम है, क्योंकि इसमें आजम के साथ जब दुआएं मांगी जाती हैं दुआएं कबूल होती हैं, और ये नाम अल्लाह के सिवा किसी और का नहीं हो सकता। ये जो अल्लाह है इसका तस्निया और जमा नहीं आती, ये इसके लिए टू नहीं होता और प्लूरल भी नहीं होता, ये सिंगुलर ही है, इसका कोई शरीक नहीं है, और अल्लाह यकता है और बेमिसाल है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, रहमान जो है इसका रूट है राहामीम, रहम, जो माँ का वोम होता है ना उसको, उसके लिए रहम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी जहां पे बच्चा परवरिश पाता है, ब्रॉट अप होता है माँ के पेट में, यूट्रस के अंदर जो वोम है तो उसमें बच्चा परवरिश पाता है ना, तो उसके लिए रहम अरबी में बोला जाता है राहामीम। तो इसके माने क्या है, रहम, तो रहमान इसके माने क्या है कि ज्यादा रहम करने वाला, और रहीम, रहीम का रूट भी रहम ही है, राहामीम। तो रहमान और रहीम का रूट यानी इसकी असल क्या है, राहामीम। जैसे होता है ना कोई जड़ होती है, ये जो रूट है ना इसको आज आप समझ लें, क्योंकि जैसे जड़ होती है ना, बीज होता है एक असल है, उससे फिर बहुत सी स्टेम निकलती हैं। तो जब हमें किसी चीज की असल वर्ड की पता होगी ना, हमें पता होगा इससे बहुत से वर्ड बनते हैं, जैसे रहम है, रहमान है, रहीम है, रहमत है, है ना, और फिर क्या है, यानी इसी की फैमिली के बेशुमार लफ्ज आप बना सकते हैं, रहमा है ना, तो बेशुमार वर्ड और भी हम इसके इसी तरह बना सकते हैं। आगे भी हम इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे जो है अब हम पढ़ेंगे सूरत अल फातिहा। अल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल के मानी है खास। अरबी जबान में जो अल लफ्ज है वो जो है वो क्या करता है, किसी चीज को खास कर देता है। तो इससे पहले कि हम इसकी डिटेल करें, हम पहले लफ्जी तर्जुमा करते हैं। अल खास, हम तारीफ, आपके पास कुरान अरबी का लिखा हुआ है ना अरबी में मतन के नीचे, अब ये तर्जुमा लिखते जाए, अल खास हम तारीफ लिल्ला, ये दो लफ्ज हैं, ली लाम जो है इसके मानी है लिए, लिए अल्लाह अल्लाह, रब रब, अल आलमीन, तमाम जहानों का। ये जो या और नून है ना, ये साइन है जमा का, यानी तमाम जहानों का, एक जहान नहीं। या नून को आप सर्कल कर ले, आलमीन तमाम जहानों का, अर्रहमान रहमान, या बड़ा मेहरबान। मैं कभी किसी लफ्ज के ना एक दो तीन चार तर्जमे भी बोलूंगी, आप एक लिख लें, दो लिख लें, तीन लिख लें, तो आपको ये पता, आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी, लुगत बढ़ेगी, और आपको ये पता चलेगा कि इस वर्ड का ये तर्जमा भी हो सकता है। तो अगर आप रहमान का रहमान लिखें तो ठीक है, ये भी गलत नहीं है, आप बहुत मेहरबान निहायत मेहरबान तो भी ठीक है, और रहीम का रहीम लिख सकती हैं, या फिर निहायत रहम करने वाला। मालिक, मालिक मालिक है, मालिक है, यौम दिन, यौम दिन, अद्दीन रोजे जजा का, बल्कि जजा ही कहना चाहिए क्योंकि यौम जो है वो दिन के लिए है। असल में दीन के एक मानी इस्लाम के हैं, इसके तीन चार मानी है। दीन का लफ्ज़ कुरान में तीन चार मानी में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे जो मानी है वो क्या है, जजा, जजा और सजा, यानी आखरत के दिन का। तो जजा और सजा, इया तेरी ही का जो है ये भी ही के लिए इस्तेमाल होता है, या ये के किसी को खास करने के लिए। तो का जो है ये एक जमीर है, इंशाल्लाह इसके बारे में फिर हम तफसील पढ़ेंगे। जैसे आप कहती हैं कि जजा कल्ला, तेरी जजा, इन तुझे अल्लाह बदला दे, और मर्द को हम जजा कल्ला कहते हैं, औरत को जजा किल्ला कहते हैं, कि औरत के लिए एक मुअन्नस के लिए किल्ला और मुजक्कर के लिए कल्ला का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इया ही का तेरी, तेरी ही नाबुदू, नाबुदू नून आया है, नून के मानी है हम के, नून आया है, नून के मानी क्या है, हम, अब्द, अब के मानी है इबादत, बंदगी। वा और या ही का तेरी, नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं, हम मदद चाहते हैं, एहदीना, एहदी हदायत, हदायत दे, सीधा रास्ता दे, सीधी राह दे, ना हमको, सिरात रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा। अलिफ लाम जब आता है ना तो उसको प्रॉपर बना देता है, प्रॉपर नाउन बना देता है, जैसे मुस्तकीम सीधा, लेकिन खास सीधा रास्ता, यानी जो अल्लाह का बताया हुआ है। तो मुस्तकीम सीधा, सिराता रास्ता, अल्लजीना जो, उन लोगों का, अल्लज़ीना जो लोग, या उन लोग, अनअमता तूने इनाम किया, अनअम इनाम किया, ता तूने, अनम इनाम किया, ता तूने, अला, अले जो है ना असल में अला है, अला पर, हिम उनके, असल में ना ये हिम नहीं था, होम था, ये भी होम था, अला जो है ना प्रेपोजिशन है, उसकी वजह से ये हिम बन गया, अला पर, एक पर, गैरी नहीं, अल मग़दूब, अल मग़दूब गजब, गजब गजब हुआ, नाराजगी हुई, अला पर, हिम उनके, वो और ला नहीं, वालीन गुमराह हुए, अब जो है हम इस सूरत फातिहा में जो मुश्किल अल्फाज हैं इनका रूट वर्ड देख लेते हैं कि इनका मादा क्या है, उनका मादा क्या है। तो आप देखें कि सबसे पहले जो है الحمد ہے. الحمد جو ہے میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ الف لام جو ہے یہ خاص کر دیتا ہے, یہ پراپر نون بنا دیتا ہے. جیسے مثلا یہ میرے پاس دیکھیں کتاب ہے نا, تو کتاب کا مطلب ہے کتاب, لیکن اگر میں کہوں گی الکتاب تو خاص کتاب ہے یہ. جیسے یہاں پر جو ہے یہ ہے ہمارے پاس قلم ہے, تو قلم القلم. ایک ہوتا ہے نا معرفہ, ایک ہوتا ہے نکرا, نون پراپر نون ہے نا, تو ایک نون ہے ایک پراپر نون ہے. تو الف لام جب عربی زبان میں لگتا ہے تو اس کو پراپر نون بنا دیتا ہے, تو الحمد یعنی خاص تعریف. اور دوسرا لفظ رب, رب لفظ بھی ہم اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں, تو رب جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا. اس کا روٹ ہے را با با. عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جیسے دو لفظ جب ہوتے ہیں نا سیم, تو اور ان کے اوپر اگر جزم ہو سکون ہو تو شدہ دے دیتے ہیں. تو رب جو ہے اگر آپ اس کو کھولیں گے تو تین لفظ ہے اس کے اندر, را با با, اور اگر آپ اس کو اکٹھا کر کے لکھیں گے تو پھر ایسے لکھا جائے گا. تو رب جو ہے اس کے بیسک میننگ براٹ اپ کے ہیں, پرورش کرنا, براٹ اپ پرورش کرنا. رب جو ہے اس کے اندر تین معنی پائے جاتے ہیں. پہلا معنی ہے رب کے پہلے معنی کیا ہے؟ مالک, آنر, لارڈ. پہلے معنی کیا ہے؟ مالک. دوسرے معنی کیا ہے؟ پرورش کرنے والا, پالنے والا, براٹ اپ کرنے والا. تیسرے معنی کیا ہے؟ حاکم, رولر, یعنی آرڈر دینے والا. تو اس کے بعد اگر ہم اگلا لفظ دیکھتے ہیں رب کے بعد, تو العالمین ہے. العالمین کا روٹ ہے عین لام میم, علم, عین لام میم. اس العالمین کی بیس کیا ہے؟ عین لام میم. اس سے کیا پھر ورڈ بنتے ہیں؟ عالم, علماء, علم, معلم, معلم. تو جب ہمیں کسی کی بیس پتا ہوگی, اس کا روٹ ورڈ پتا ہوگا نا, اس سے ملتے جلتے جتنے ورڈ آگے قرآن میں آئیں گے نا, ہمیں سب آتے چلے جائیں گے, ہمیں مشکل نہیں لگے گا. اور یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ یوں ہمیں لگتا ہے کہ الفاظ بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو کیسے یاد کروں, لیکن اس کے بارے میں بھی یعنی بتاتے ہیں جو جنہوں نے اس کی ریسرچ کیا کہ قرآن میں تقریباً 80,000 ورڈ ہیں, 80,000 اس میں الفاظ ہیں, اور ایکچوئل 2,000 ہیں. 80,000 جو ورڈ ہیں, ایکچوئل 2,000 ہیں, جو ریپیٹیشن کی وجہ سے 80,000 بن گئے ہیں, بار بار ریپیٹ ہونے کی وجہ سے. اور 2,000 میں 500 ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ صرف 1,500 جو ہیں, 1,500 ورڈ جو ہیں صرف یاد کرنے ہیں ہمیں, کیونکہ 500 اردو میں بولے سمجھے جاتے ہیں. تو بہت زیادہ جو ہے ہمیں مطلب مشکل نہیں ہے. قرآن میں 80,000 ہیں اور 2,000 جو ہیں وہ ایکچوئل ہیں, ریپیٹیشن کی وجہ سے وہ 80,000 بنتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اب ہم نے یہاں پہ جیسے العالمین جو ہے, العالمین لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم ہے نا. تو اس کا معنی ہے کہ جاننا, علم, پہچان, کسی چیز کی حقیقت جو ہے اس کو جاننا, ریئلٹی, کسی بھی چیز کی ریئلٹی جو ہے نا اس کو جاننا, اس کے بارے میں پتا چلنا, اس کو علم کہتے ہیں. الرحمن, الرحیم, یہ بسم اللہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے مالک, مالک کیا ہے؟ آنر ہے, ٹھیک ہے. دین, دین یہاں پہ اصل میں اس لیے مشکل ہے, دین لفظ یہ خاص ہے, اس کو آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنا ہے. دین یہاں پہ ریلیجن کے معنی میں نہیں ہے, ڈے آف ججمنٹ کے معنی میں ہے. دین یہاں پہ ڈے آف ججمنٹ یعنی جزا اور سزا کا دن. جزا اور سزا کا دن وہ کون سا دن ہے؟ قیامت, قیامت, آخرت جب ہوگی. دنیا جو ہے या जो है इसके मतलब होता है जैसे किसी चीज को जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है ही, जैसे ये ना कि तेरी ही, तो आप उसको जैसे स्पेसिफिक कर देते हैं। फिर इसके बाद नस्ताइन, नस्ताइन का रूट है आयन वानून, आयन वानून। इसी की आयन वानून का मतलब होता है मदद करना, आयन व नून का मतलब है मदद करना। और इसी से है जैसे आप तावुन करते हैं, तावुन, तावुन का रूट क्या है, आयन व नून। एनत, आप एनत देते हैं, पैसे देते हैं, इसका रूट क्या है, आयन व नून, एनत, तावुन। मुआविन बनना, आप कहते हैं आप उसके मुआविन बने, ये कुर्सी उठाने में, तो मुआविन का रूट क्या है, आयन व नून। तो जब आपको किसी चीज का रूट वर्ड आ जाएगा ना, आप उससे कई लफ्ज बना लेंगे और आपके लिए कोई वो चीज इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो नस्तईनु ऑन आयन व नून। अच्छा, वो आपको नजर नहीं आ रहा, आप परेशान होंगे कि हमें ये नजर तो नहीं आ रहा, तो फिर ये कैसे है। तो इसका आप एक बात याद रखें, आज आपने तजवीद के सबक में अलिफ व या पढ़ा है ना, इनको हरूफ मद्दा कहते हैं, इनका दूसरा नाम हरूफ इल्लत भी है। हरूफ इल्लत वो होते हैं, ये इल्लत बीमारी को कहते हैं, डिजीज को कहते हैं। तो ये वर्ड जो है ना, ये कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, चेंज हो जाते हैं सम टाइम आराब की वजह से, कभी अपनी फेली हालत की वजह से, यानी वर्ब में ये किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं उसके उसके लिहाज से ना अलिफ वो या चेंज हो जाते हैं। अलिफ से मुराद हमजा, हम अलिफ तो है ना, तो ये जो हरूफ मद्दा है ये हरूफ इल्लत भी है, ये चेंज हो जाते हैं। तो सम टाइम ऐसा होगा कि आपको लिखा हुआ वर्ड नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है ना, इसकी वजह से वो चेंज होके या में आ गया है, वो ना या से चेंज हो गया, एक्चुअली वो था ये आयन वो नून था, लेकिन ये वर्ब जो यूज हुआ है ना उसमें या वो चेंज होके या बन गया है। ये राइट नो नहीं, इंशाल्लाह ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम जब पढ़ेंगे ग्रामर, थोड़ा थोड़ा टच, तो थोड़ी थोड़ी चीजों की समझ आएगी। मैं सिर्फ एक नुक्ता जो आपको आज बताना चाहती थी वो ये थी कि वो नजर नहीं आ रहा और मैं कह रही हूँ कि रूट में वो है, तो बाज़ुकात वो असल चीज नजर नहीं आ रही होती ना, एक और चीज नजर आ रही होती है, तो लोग परेशान, मुझे नजर आए तो मुझे समझ आई कि लोग परेशान क्यों है। तो ये है, अब ये बात समझ में आ गई, आइंदा किसी क्लास में इसको और तफसील से देखेंगे। ए दीना, इसका रूट भी हा दाल या है। अब आप देख ले, मैंने अभी आपको बताया ना अलिफ वो या, ये अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, तो ए दिना हा दाल या, हुदन नहीं लिखते जैसे हुदन, ये उसी तरह लिखना है, तो हा दाल या। अब या को आप देखें कि यहां पे तो या नजर नहीं आ रहा, ए दिना में या नजर नहीं आ रहा ना, लेकिन है, या गिर गया है, ये क्योंकि हरूफ इल्लत है तो ये गिर गया है, यानी सम टाइम बाज, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ती हैं कि कुछ वर्ड लिखे जाते हैं पढ़े नहीं जाते है ना, साइलेंट वर्ड्स होते हैं, या ये के बाज जो होते हैं वो उन पर यानी उनको पढ़ा ही नहीं जाता, इसी तरह। तो यहाँ पे ए दीना, इसका रूट क्या है, हा दाल या है। तो इसके मानी क्या है, हदायत। सिरात ये खास लफ्ज है, ये नया लफ्ज है, और वैसे बचपन से हमने इसको सुना है कि सिरात, इसका रूट है स्वाद रा त्वा, अलिफ निकाल दे इसमें से बस, बाकी यही है ना, अलिफ नजर आ रहा है ना बीच में, और शुरू में अलिफ लाम भी नजर आ रहा है आपको, वो भी हटा दें, स्वाद रा त्वा तोए है ना। सिरात जो है अरबी जबान में लंबी और तेज धार तलवार सोड को कहते हैं, सोड जो बहुत तेज हो और लंबी बारीक सी हो, अरबी जबान में लंबी और तेज धार तलवार को सिरात कहते हैं। तो जहन्नुम को क्रॉस, जब अल्लाह के पास जाएंगे हिसाब किताब होगा, तो नीचे जहन्नुम है, ऊपर उसके ना एक रास्ता बनाया गया, ब्रिज, पुल, सिरात, ब्रिज है, उसका नाम है सिरात। उसको सिरात इसलिए कहा जाता है हदीस में कि वो तलवार से ज्यादा बारीक होगा और तलवार की तरह ही तेज होगा, यानी तलवार की तरह ही बारीक होगा और तलवार ही की तरह वो तेज होगा, इसलिए उसको सिरात कहा जाता है। तो यहाँ पे भी हम कहते हैं यानी सिरात, तो सिरात से मुराद क्या है कि लंबी और तेज धार तलवार जो रास्ता जो जहन्नुम को अबूर करने के लिए बनाया जाएगा। तो चूंकि वो भी तलवार से तेज बाल से बारीक होगा, तो ऐसे जो रास्ता जो बहुत ही बारीक हो बहुत ही तेज हो तो बहुत एहतियात से उसमें से गुजरना पड़ता है ना, उसके इर्द गिर्द बहुत से खतरात होते हैं। तो इसी तरह जो मुस्तकीम है ना, सिराते मुस्तकीम, ये भी बहुत मुश्किल है, ये भी बहुत मुश्किल है। राइट लेफ्ट हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, हम कभी शैतान की बात मान ली, कभी नफ्स की मान ली, कभी इधर हो गए कभी उधर हो गए, है ना। सब पता है कि क्या गलत है क्या ठीक है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो ये है मुस्तकीम। मुस्तकीम का रूट है काफ वाव मीम, कौम से है, काफ वाव मीम कौम से है, इसके मानी है खड़े होना, काफ वाव मीम खड़े होना। और इसी से अकामत है, नमाज होती है उससे पहले अकामत होती है। अकामत का मतलब क्या होता है, नमाज खड़ी हो गई, जब नमाज के लिए खड़े हो रहे होते तब अकामत होती है ना। कौम का मतलब ही वो लोग जो खड़े हुए हैं, कौम एक जिंदा होती है खड़ी हुई होती है। तो आप देखें तो आपको मुस्तकीम का रूट अगर पता है, इसकी फैमिली के कई वर्ड आ जाएंगे। मुस्तकीम का रूट काफ वाव मीम है, जिससे मुराद कौम है, इसी से मुराद अकामत है, और इसी से मुराद क्याम है। नमाज में जब आप खड़े होते हैं तो क्याम करते हैं, क्याम का रूट भी काफ वाव मीम है। तो इसकी फैमिली के तीन वर्ड भी हमने देखे इंशाल्लाह, और देखेंगे बाद में। अगला लफ्ज है अनअमता, नाम है इसका रूट, नाम, नून आई मीम नाम, नेमत से है नेमत। अनअमता इसका रूट है नून आई मीम, नेमत से है, और इसकी फैमिली के बहुत से वर्ड हैं, जैसे इनाम है, नेमा है, अनम है, आप नाम रखते हैं ना, तो ये है। इसी तरह आगे है गैर, गैर लफ्ज जो है नहीं के मानी में इस्तेमाल होता है। वैसे तो नहीं के लिए और भी बहुत से लफ्ज हैं, हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे गैर के मानी भी नहीं के हैं, कभी ये सवाय के मानी भी देता है लेकिन नहीं के मानी। अलमखदूब, इसका रूट है गैन, द्वाद और बा, बाकी सारे एक्स्ट्रा वर्ड है, गैन, द्वाद और बा, ये इसका रूट है। गजब है ना, आप कहते हैं गजबनाक हुआ मखदूब, आप कहते हैं ना फलां बड़ा गजबनाक था, ये गजब की चीज है, ठीक है। तो ये उसी से है मखदूब, गुस्सा होना, ये तो फिर मानी है इसके ना। आगे है द्वालीन, इसका रूट है दलल, द्वात लाम लाम, लाम पर शद बता रही है कि लाम दो है, लाम लाम, द्वा लाम पर शद बता रही है कि लाम दो है, सही है ना। तो अब हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि मुश्किल अल्फाज जो हैं वो क्या हैं। तो द्वालीन, द्वाद लाम लाम, दलल के मानी है रास्ता खो देना, रास्ता गुम हो जाना, रास्ता गुम हो जाना या रास्ता जो है वो चला जाए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طب راستا ملينا يعني هٹ جائے راستے سے انسان. तो अब जो है, अब हम सूरत अल-फातिहा जो है इसकी तफसील देखते हैं। पहले हमने लफ्जी तर्जुमा देखा, फिर हमने मुश्किल अल्फाज को सॉर्ट आउट किया, उसको उसमें से उसका रूट निकाल के देखा। अब हम इसको तीसरी दफा पढ़ेंगे, तीसरी दफा जो पढ़ेंगे तो अब आप देखें कि सूरत अल-फातिहा का नाम ही फातिहा है। फातिहा इसका नाम, मानी क्या है کہ کھولنے والی، افتتاح کرنے والی، اوپننگ. چونکہ یہ سورت قرآن مجید کی اوپننگ سورت ہے تو اس کا نام فاتحہ رکھا گیا. اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ سورت فاتحہ کیوں ہے، سب سے پہلے سورت فاتحہ کیوں ہے، حالانکہ پہلی وہی تو سورت فاتحہ نہیں تھی. پہلی وہی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، تو یہ محدثین کے مطابق، مفسرین کے مطابق سورت الفاتحہ جو ہے نازل ہونے کے لحاظ سے پانچویں نمبر کی سورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں لکھی بھی ہے نا، لکھے ترتیب کے لحاظ سے پہلے نمبر کی سورت ہے. تو یہ ترتیب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو جبرائیل علیہ السلام نے پیارے رسول کو بتایا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کے سب کے سٹارٹ میں رکھا، اپنی اہمیت کے لحاظ سے، اپنی فضیلت کے لحاظ سے. جو بھی آیتیں نازل ہوتی تھی، جو صورتیں نازل ہوتی تھی نا، تو ساتھ ساتھ جبرائیل علیہ السلام بتاتے جاتے تھے کہ اس کو کہاں پہ رکھنا ہے، اس کی ترتیب جب ہوئی تو کیسے کرنا ہے. تو قرآن مجید کی آیات، صورتوں کے نام، ان کی ترتیب، یہ سب کچھ ہمیں جو ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور پھر آگے ہمیں ملتی ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک نازل نہیں ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ صورتیں اکٹھی تھیں، ان کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے تھے، الگ الگ نہیں کر سکتے تھے. جب بسم اللہ نازل ہوئی تو اس کو صورتوں کے درمیان میں رکھا گیا. یعنی صورت جو نمل ہے اس کی یہ ایک آیت ہے نا، اور باقی صورتوں سے پہلے یہ استعمال ہوتی ہے، صورتوں کے شروع میں، بگننگ میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے نا. لیکن صورت فاتحہ جو ہے اس کے اندر بھی آیت کے طور پہ اس کو گنا جاتا ہے. سورت فاتحہ کے اوپر لکھیں، دیکھیں کتنی آیتیں ہیں لکھی ہوئی، کتنی آیتیں ہیں آپ کاؤنٹ کریں، کتنی آیتیں ہیں آپ نہ آوازیں نہیں نکالیں، صرف کاؤنٹ کریں پھر ہاتھ کھڑا کریں کہ کتنی آیتیں ہیں. کاؤنٹ کی تو کتنی بنی؟ آیت ابھی بسم اللہ نہیں شامل کریں، سکس ہے نا. تو سورت کے اندر اگر ہم صرف آیتوں کو کاؤنٹ کریں تو سورت فاتحہ کی آیتیں کتنی ہیں؟ چھ. اور ساتویں آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت میں ہے، ہر سورتوں میں ایسے نہیں ہے کہ بسم اللہ کو شامل کیا جاتا ہے. تو ایسے نہ ہو ہر سورت کے اندر بھی آپ اس کو گننا شروع کر دیں، آپ کبھی گنیے گا باقی آیتوں کو بھی. تو یہاں پہ بھی یہ یعنی اس کے اندر جو ہے یہ لکھی جاتی ہے اور گنی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے. تو سورت الفاتحہ یہ اس کا نام ہے، اور یہ سورت مکی سورت ہے. تو مکی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مکہ میں نازل ہوئی. مکی دور یہ لکھ لیں، مکی دور 13 ایئرز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پروفٹ بنے تو پروفٹ ہوڈ کے 13 ایئرز مکہ میں ہیں، 10 ایئرز مدینہ میں ہیں. تو ان 13 ایئرز، ڈیورنگ 13 ایئرز یعنی اس عرصے کے اندر جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. بعض اوقات ایسا بھی تھا مکہ کے اندر نہیں تھے، مکہ کے باہر تھے، لیکن اس پیریڈ میں نازل ہوئی تو مکی صورتیں کہلاتی ہیں. یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ 13 سال کے عرصے میں جو صورتیں نازل ہوئیں، آپ مکہ میں تھے یا مکہ سے باہر تھے، خواہ مدینہ میں کیوں نہیں تھے، کہیں بھی باہر تھے، طائف تھے، کہیں بھی تھے، مکہ سے باہر تھے، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. کیونکہ 13 ایئر جو مکہ کے ہیں نا، اس کے دوران وہ صورتیں نازل ہوئیں. تو ایسی صورتوں کے اوپر آپ کو مکی لکھا ہوا ملے گا. اور جو 10 سال مدینہ کے تھے، پیرسن جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو اس دوران جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں. ہاں آپ بعض اوقات ایسا بھی تھا مدینہ سے باہر آئے ہوئے تھے، آپ مکہ میں تھے، مکہ کے راستے میں تھے، تو بھی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس طرح یہ مکی اور مدنی جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو آگے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. سورت الفاتحہ جو ہے یہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ سورت جو ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں جب کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو کیسے مانگنی چاہیے. یہ سورت ہمیں ادب سکھاتی ہے، یہ سورت جو ہے ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تہذیب سکھاتی ہے، ایٹیکیٹ سکھاتی ہے. دنیا میں بھی جب ہمیں کسی سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے نا، تو ہم اس کی کہتے ہیں، فون کر کے جھٹ نہیں کہتے کہ مجھے نا نمک چاہیے، مجھے فلاں کا فون نمبر چاہیے. آپ فون کرتی ہیں، آپ بہت جلدی میں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم فون کر کے پوچھتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا، آپ خیریت سے ہیں نا، और सब घर में खैरियत है, अच्छा तो फिर आप अपनी बात बताती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने हमें ये तरीका और तहजीब सिखाई कि जब किसी से कुछ मांगो तो पहले उसकी खैरियत या उससे अच्छे तरीके से बात करके फिर। तो इस सूरत के शुरू में भी पहले हम अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, फिर हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं कि अल्लाह हमें दे दे। तो ये चीज हमें अल्लाह ने सिखाई कि आम दुनिया में भी ऐसे करना चाहिए। और सूरत फातिहा जो है, इसके बारे में हम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अब कुछ अहदीस इसकी फजीलत में पढ़ूंगी और आपको सामने रखूंगी, आप जितने भी उसके जैसे हिंट लिखकर लिख सकें तो लिखें, बाकी इंशाल्लाह फिर आपको फोटोकॉपी करके दे देंगे, या आप मतलब तफासीर से, जैसे मैंने आपको शुरू में तारुफ करवाया था कि कौन कौन सी बहुत सी तफासीर है, तो उनके अंदर से हमें ये चीजें मिलती हैं, हदीस की किताबों से मिलती हैं, तो आप जो हैं फिर उनसे जो है उनसे भी आप ले सकती हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि यानी आप ये नहीं कि आप परेशान है कि लिखी नहीं जा रही, आप सुने और जो उसके हिंट बनाकर आप लिख सकती हैं उतना इशारे इशारे लिख लें तो आप उससे भी याद कर सकती हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह नो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल्हम्दुलिल्लाही उम्मुल कुरान उम्मुल किताब और दोहराई हुई 7 आयतें हैं। उम्मुल किताब का मतलब क्या है? किताब की माँ, किताब की असल। और उम्मुल कुरान का मतलब क्या है? कुरान की असल, कुरान की जड़। तो अब आप देखें उम्मुल कुरान यानी कुरान की बुनियाद है, और कुरान की बुनियाद क्या है? तौहीद, आखरत और रिसालत। तो तौहीद, आखरत, रिसालत तीनों जो मेन अकीदे हैं वो इस सूरत के अंदर आते हैं, इसलिए इसको उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब जो है वो कहा जाता है। इसी तरह से एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं, इमाम मुस्लिम ने इसको रवायत किया कि एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक जोरदार आवाज सुनी। उन्होंने अपना सर उठाया और फिर फरमाया, ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया, ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पर कभी नहीं नाजिल हुआ। फिर इस फरिश्ते ने आपको सलाम किया और दो नूरों की खुशखबरी दी और कहा, ये दो नूर आप ही को दिए जा रहे हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरत फातिहा और दूसरा सूरत अल बकरा की आखिरी आयतें। आप जब कभी इन दोनों से कोई कलमा तिलावत करेंगे तो आपकी तलब की गई चीज जरूर मिलेगी। सूरत फातिहा और सूरत अल बकरा की आखिरी आयतों से पढ़कर जो चीज भी हम अल्लाह से फिर मांगेंगे हमें वो जरूर मिलेगी। तो दुआ दुआ के लिए भी है। अच्छा, इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि ये सूरत जो है ये शिफा है। और वो मशहूर हदीस आपने बुखारी की सुनी होगी कि एक दफा जो अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि सहाबा अरब के एक कबीले के पास गए और उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी कबूल ना की, यानी जो लोग थे ना कबीले के उन्होंने उनकी जियाफत को ना माना कि हम आपकी मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। इत्तफाक से उनके सरदार को बिच्छू ने काट लिया। वो सहाबा के पास आए और कहने लगे, तुम में से किसी के पास बिच्छू के काटे का कोई है इलाज? उन्होंने कहा कि हाँ है, मगर चूंकि तुमने हमारी जियाफत नहीं की लिहाजा हम भी इसका बदला लेंगे, मुआवजा लेंगे इलाज का। उन्होंने चंद बकरियां देना कबूल की। एक सहाबी ने सूरत फातिहा पढ़ना शुरू की। हजरत अबू सईद खुदरी थे जिन्होंने पढ़ी थी, हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हो, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि सूरत फातिहा पढ़कर मैंने उस पर दम किया, पढ़ते जा रहे थे और फूंक मारते जा रहे थे। आखिर चंद ही दिनों में सरदार अच्छा हो गया। अब कबीले के लोग बकरियां लेकर आए। अब सहाबा को तरद्दुद हुआ कि आया ये मुआवजा लेना चाहिए या नहीं, और कहने लगे, जब तक हम रसूल अल्लाह से पूछ ना ले ये बकरियां ना लेंगे। फिर उन्होंने आपसे पूछा तो आप हंस दिए और फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सूरत फातिहा इलाज है, शिफा है, या ये इलाज? इसके लिए एक लफ्ज है रुकैया, रुकैया यानी झाड़ फूंक करना, यानी उसके लिए भी ये इस्तेमाल होती है। तो कहा कि वो बकरियां ले लो और मेरा हिस्सा भी लगाओ। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब इसे इलाज किया जा सकता है, और बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए इसको। अब बच्चे को बुखार हो गया, कहीं दर्द हो रहा है, कोई भी मुश्किल है। फिर इसी तरह से जो है एक और बात हमें पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि ला सलाता लिमन लम यक्रा बिफातिहतिल किताब, कि जो सूरत फातिहा ना पढ़े तो उसकी सलात नहीं। जब तक सूरत फातिहा नहीं पढ़ते ना, नमाज नहीं होती। ये बहुत जरूरी है कि, और हम दिन भर में 17 रखते फर्ज नमाज जो पढ़ते हैं, हर नमाज फर्ज नमाज की हर रकत में सूरत फातिहा जरूर पढ़ते हैं, इससे इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। फिर इसी तरह से यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें ये बात भी पता चलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझे कुरान की एक ऐसी सूरत बताऊं जो कुरान की सब सूरतों से बढ़कर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है और वही सबा मसानी और वही कुरान अजीम है जो मुझे दिया गया। तो इससे हमें पता चलता है कि सूरत फातिहा जो है ये कितनी अहम सूरत है, ये कितनी अहमियत की हामिल है और हमें इस सूरत जो है इसको पढ़ना चाहिए, इसका मताला जो है वो करना चाहिए। फिर इसी तरह हमें यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी जो है वो मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत फातिहा जो है ये एक दुआ है जो बंदों को सिखाई गई है। तो सूरत फातिहा जब दुआ है तो यानी हमें यानी इसमें हम अल्लाह से एक दुआ करते हैं, तो जब हमने इसमें दुआ की इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो अल्लाह ने हमें पूरा कुरान मजीद जो है वो नाजिल कर दिया। तो हकीकत यह है कि सूरत फातिहा बहुत अजीम सूरत है, ये पूरे कुरान का निचोड़ है और इसमें हम अल्लाह के आगे जो है वो अपना मुद्दा अपना मकसद जो है वो बयान करते हैं। तो जैसे कि पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो असल में आलमीन आलम आलम जो है वर्ड को कहते हैं, है ना। आलिम कौन होता है? स्कॉलर होता है, आलिम जो होता है। तो आलिम इल्म रखने वाला और आलम जो दुनिया दुनिया है ना। तो आलमीन सारी दुनिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अलहम्द हम के मानी क्या है? शुक्र के हैं, तारीफ के हैं। इस सिलसिले में एक हदीस बड़ी अहम है, जैसे हमें अल्लाह की हम्द बयान करनी चाहिए, अल्लाह की तारीफ बयान करनी चाहिए। हमें बड़ी खूबसूरत हदीस है, इब्ने माजा ने इसको रवायत किया है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह से, कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक मर्तबा एक शख्स आया और कहने लगा कि या रब लकल हम्द, ए रब हम्द तेरे लिए है, तारीफ तेरे लिए है। कमा यम बगी, जैसा कि तू चाहे, ले जलाल वजी का व अजीम सुल्तानिक। के क्या फरमाया उस शख्स ने कि या रब्बी लकल हम्द कमा यम बगी ले जलाल वजी का व अजीम सुल्तानिक, के तेरी उतनी तारीफ है ए अल्लाह जैसे कि तेरा अजीम जलाल वाला चेहरा है, जैसा कि तू चाहे यानी तेरा चेहरा चाहे तू चाहे, और जैसे तेरी बड़ी सी सल्तनत है ना उसके मुताबिक तेरी हम्द। तो इस शख्स ने ना खुद ही ऐसे कहा। अब कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते ये तारीफ सुनकर घबरा गए, अल्लाह ताला से कहने लगे कि हम उसका कितना अजर लिखें। आखिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कहा कि उसने क्या कहा, अल्लाह के अल्लाह खूब जानता है कि मेरे बंदे ने क्या कहा। तो फरिश्तों ने बताया कि तेरे बंदे ने एक ऐसा कलमा कहा है, अब हम नहीं जानते कि उसका कितना अजर लिखें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जानने के बावजूद कि अल्लाह ताला जानता था कि उसने क्या कहा, अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि तुम यूं ही उसे लिख लो, मैं खुद अपनी मुलाकात के वक्त उसका अजर जो है वो दूंगा। ऐसे ही लिख लो इसको, जब वो बंदा मुझसे मुलाकात करेगा मैं उसको दूंगा। तो हम का ये दुआ भी याद कर सकते हैं जो आपको लिख कर दे देंगे कि या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी ले जलाल वजी का वाजी में सुल्तानिक। तो हकीकत क्या है कि शुरू में ही अल्लाह की तारीफ है, ये तारीफ अल्लाह ही के लिए है। हम किसी को देखते हैं ना कि उसने बिरयानी अच्छी बनाई, हम कहते हैं क्या अच्छी बनाई है ना। किसी की कढ़ाई देखते हैं तो उस पर निछावर हो जाते हैं। किसी की जैसे स्नो के मौसम में जो गाड़ी चला रहा है, कहते हैं बड़ी बात है भाई हम नहीं चला सकते ना, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन मेरी बहनों असल तारीफ जो है वो अल्लाह की है, तारीफ अल्लाह ही के लिए है। लिल्ला लाम जो है ना, इसने तारीफ को अल्लाह के लिए खास कर दिया, जो रब है तमाम जहानों का। रब जो है उसके मानी ये है कि किसी चीज को उसकी इब्तदा से लेकर इंतहा तक पहुंचाना, किसी चीज को उसकी बिल्कुल यानी जब जैसे कोई चीज छोटी सी होती है ना, छोटेपन से लेकर उसको उसके कमाल के दर्जे तक पहुंचाना। जैसे एक जर्रा है ना, कि जर्रे को कमाल दे दिया जाए तो वो दरख्त बन जाए, तो ये रब की खूबी है। जैसे एक हकीर सा पानी का नुतफा है, अल्लाह ताला ये रब की खूबी है कि उस नुतफे को फिर एक जीता जागता इंसान बनाकर खड़ा कर देता है। तो ये इसको रब कहते हैं। रब के लिए आप अगर अरब इलाकों में आप रहते हैं ना, लोग जो आप घर किसी से किराए पे लेते हैं, अरबाब कहते हैं आप, मालिक अरबाब। तो वहां पे जो नौकर गुलाम थे वो भी अपना जो ऑनर था उसको रब लफ्ज इस्तेमाल करते थे, लेकिन अल्लाह का लफ्ज खास अल्लाह के लिए, ये कभी किसी इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। बाज नाम है ना हम इस्तेमाल कर लेते हैं, अब भी आप जाएंगे वो कहेंगे कि अरबाब ने किराया इतना बता दिया, तो अरबाब का रूट क्या है? रब। माशाल्लाह आप तो पहले दिन ही पढ़े लिखे हो गए हैं, आप ऐसे परेशान हो रहे थे। तो तारीफ अल्लाह के लिए है जो पालनहार है, यानी जैसे माली है ना एक बीज को लगाता है तो आप देखें कि गोडी करता है, जमीन को नरम करता है, पानी देता है, खाद डालता है, हाथ उठाकर दुआ करता है। तो एक छोटे से बीज को एक पौधे तक पहुंचाने के लिए माली कितनी मेहनत मजदूरी करता है ना। इसी तरह यानी ये एक एग्जाम्पल दे रही हूं, एग्जाम्पल मैच नहीं करती। असल रब, असल पालनहार, असल जो जर्रे को जो है वो कमाल देने वाला, नुतफे को जीता जागता इंसान बनाने वाला, ये किसकी खूबी है? अल्लाह ताला कि वो एक बीज से फूल और पत्तियां निकालता है, वो दरख्त निकालता है, वो पौधे बनाता है। पूरी दुनिया में रब की तारीफ है और रब की ये जो कारीगरियां हैं ये नजर आती हैं। अल आलमीन, तमाम जहानों का। तो बहुत से आलम है, बहुत से आलम है। एक इंसानों की दुनिया है, एक जिन्नों की दुनिया है, एक कीड़ों की दुनिया है, चींटियों की दुनिया है, मछलियों की दुनिया है, जंगल के जानवरों की दुनिया है। तमाम जितने भी जितनी भी दुनिया है ना, उन सब का रब कौन है? अल्लाह है। एक तो ये, और एक इससे पहले जो दुनिया थी, हमारे बाद जो दुनिया आएगी, तमाम जितनी दुनिया, इन सब का रब कौन है? अल्लाह है। तो इस रब की क्या करना चाहिए? हम्द बयान करनी चाहिए, इसकी तारीफ बयान करनी चाहिए। और वो आपने, वो आपको दुआ आती है ना कि दो जुमले हैं, खफीफा कलमा ताने खफीफा ताने, है ना, फिल लिसानी, जबान में ये हल्के हैं लेकिन शकीला ताने फिल मिजानी, मिजान के अंदर ये बहुत भारी है। वो कौन से जुमले हैं? सुबहान अल्लाह ही। अच्छा, तो ये दो जुमले, तो ये हम्द बयान करनी चाहिए। इसीलिए हमें ये पता चलता है कि जब हम गाड़ी पर बैठे तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए? सुबहान अल्लाह ही वा बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह जी सखर लना हाजा व मा कुन्ना लहू मुकरिन। तो यहाँ पे भी अल्लाह की हम किबरियाई बयान करते हैं। हम खाना खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ पढ़ते हैं। हम और भी चलते फिरते, हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ दुआओं से हमें ये बात जो है वो पता चलती है कि अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह की तारीफ बयान करो। आगे क्या है? अर्रहमान रहीम, जो बहुत रहम करने वाला है और रहीम है। ठीक है, तो अर्रहमान के बारे में आता है कि अल्लाह का रहम जो है ये काफरों पर भी है और मुसलमानों पर भी है, दुनिया में आम है अल्लाह का रहम। और रहीम जो है ये खास आखरत के लिए है। बाज मुफस्सरीन ये कहते हैं कि रहीम ये सिर्फ, ये रहम जो है ना सिर्फ अल्लाह के मोमिन बंदों पर होगा। दुनिया में अल्लाह सब पर रहम करता है, कैसे? काफरों को भी खाना देता है और मुसलमानों को भी देता है। बादल बरसता है, आबादी पे भी बरसता है, वीराने पे भी बरसता है। जो कलमा पढ़ता है बारिश उसके घर भी होती है, जो कलमा नहीं पढ़ता उस पर भी होती है। रिज्क, खाना पीना, औलाद, दुनिया का माल अल्लाह सबको देता है। तो रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला। जो उसका, जो कुफर करता है, जो शिर्क करता है, जो जुल्म करता है, जो जानी है, जो कातिल है, जो बहुत ज्यादा बुरा है, उसको भी अल्लाह रिज्क देता है। बहुत रहम करने वाला है लोगों, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। मैं और आप तो थोड़ा सा किसी से नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, अब तुझे नहीं देना, तुझे नहीं बोलना, है ना। अब किसी को अगर पैसे दे के मदद ही कर रहे थे, रिश्तेदारों को कोई गलती कमी बेशी हो जाती है तो कहते हैं कि नहीं, अब नहीं, अब तो खैरियत भी नहीं पूछनी, लेना देना तो दूर की बात है ना। तो मेरी और आपकी, मैं और आप क्या करते हैं कि यानी नाम लोग हम रखते हैं रहमा, एक सहाबिया का नाम भी था रहमा, हम और बहुत सीधी जबान में कहते हैं रहमत बीवी, समझ आई? रहमत बीवी और रहमा सेम नाम है। तो लेकिन असल ये खूबी क्वालिटी अल्लाह की है। और हदीस क्या है? इरहम मन फिल अर्दी यरहमो का मन फिस समा, जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है, यानी दुनिया भी उसकी आखरत भी उसकी। और पहले हमने अल्लाह का रहम के बारे में आयत पढ़ी, आगे अल्लाह के इंसाफ के बारे में आयत है कि लोगों अल्लाह ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया में दो लोगों के एटीट्यूड डिफरेंट हैं तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि अदल ना करें। قیامت کا دن ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اور ابو جہل کا رزلٹ ایک جیسا اناؤنس نہیں کرے گا. یعنی رحمت دنیا تک تھی، رحمان اور رحیم، وہاں بھی رحمت ہوگی لیکن اس دن یعنی دنیا پہ جو جس کے عمل تھے اس کے مطابق ہی ہوگی. تو وہ دن ججمنٹ کا دن ہے، مالک یوم الدین. تو یہ آیت بڑی اہم ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ایک کوالٹی کو، ایک صفت کو جب یاد رکھتے ہو، میری ایک ایٹریبیوٹ کو، تو پھر دوسری کو مت بھولو. اللہ کی ایک صفت دوسرے سے نہ ٹکراتی نہیں ہے، اللہ کی ایک صفت دوسرے سے نہ ٹکراتی نہیں ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کو کہ وہ اس کے اپوزٹ نہیں ہے. اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے تو ایٹ دی سیم ٹائم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرنے والا بھی ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ جسٹس کرنے والا ہے، جسٹیفائی کرے گا ہر شخص کے ساتھ، جسٹیفائی کرے گا اس کے عملوں کے مطابق. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. تو کیا بات یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، مرنا ہے. یہاں پہ پورا کارنامہ زندگی جمع کیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ جزا اور سزا جو ہے وہ ملے گی. پھر فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت جو ہے عین بادال، عبادت جو ہے اس کے بھی تین معنی ہیں. ایک اس کے معنی ہے ورشپ کرنا، ورشپ تھری میننگ ہے اس کے، ورشپ پوجا کرنا. دوسرے معنی ہے اوبیڈینسی، اوبیڈینٹ ہونا، ورشپ کے ساتھ اوبیڈینٹ ہونا. اور تیسرے معنی ہے سرونٹ بن جانا، سرونٹ غلامی میں آ جانا. تو تھری معنی ہے ورشپ، اوبیڈینٹ، دین سرونٹ. کیونکہ دیکھیں ورشپ بہت آسان ہوتی ہے کہ آپ کہیں امی سے کہیں، جیسے بچے کہتے ہیں امی آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، امی کہتی ہیں ایک پانی کا گلاس دے دو، کہتے ہیں نہیں امی بڑا مشکل ہے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، امی بیٹھی، امی کہتی ہیں ذرا فون اٹھا دیں، ہم کہتے ہیں نہیں امی آپ، امی آئی لو یو، آئی کس یو، لیکن امی میں اس وقت فون نہیں دے سکتی، ہے نا، بیل ہوئی دروازہ کھول دے. اب بچے کہتے ہیں آپ، ہر بچہ کہتے ہیں امی آپ مجھے ہی آواز دیتی ہیں، لیکن امی آپ مجھے لگتی بہت اچھی ہیں. جیسے آپ کسی کو پیار شیار کر لیا ادھر ادھر، ہاں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کہنا شہنا کوئی نہیں ماننا. تو یہ ہے ورشپ کے جسٹ. جیسے دوست ہیں ہم کہتے ہیں میں تمہاری دوست ہوں، آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب مشکل ہوتی ہے تو میں کہتے ہیں نہیں نہیں دیکھے نا میرے لیے تو بڑا مشکل ہے نا. جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں. تو پوجا یہ تو میں ایسے، جیسے ہندو لوگ ہیں گھومتے ہیں ورشپ کرتے ہیں، ہاں تو ورشپ جو ہے کہ جیسے آپ کسی کو ایک رسپیکٹ دیتے ہیں، جسٹ ایک رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن دوسرے جو ہے نا اوبیڈینٹ ہونا، اطاعت. تو عبادت کے معنی ورشپ کے بھی ہیں کہ آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، سیکنڈ کیا ہے کہ آپ نے اس کا کہنا بھی ماننا ہے، اطاعت، اوبیڈینٹ ہونا. اور اوبیڈینٹ میں یہ ہے کہ کبھی مانا کبھی نہ مانا، تھوڑا مانا کبھی مرضی، کبھی لگا کہ نہیں نہیں اب بڑی مطلب مشکل ہے، روزے اس وقت نہیں رکھ سکتے، اور یہ کہ پیسے ہیں، حج جو ہے وہ دیکھا جائے گا جب سارے کام ہو جائیں گے، اور بھی بہت سی اس کی مثالیں ہم بعد میں پڑھیں گے. تیسرا معنی یہ ہے، تیسرے معنی کیا ہے کہ بندگی، غلامی. اس کا مطلب ہے کہ سرونٹ ہی بن جانا، یعنی کہ ہر وقت یہ یاد رہے کہ میرا کوئی آقا ہے اور میں اس کی سرونٹ ہوں. یہ نہیں ہے کہ بس رسپیکٹ دے دی، کبھی کبھی اطاعت کر لی، نہیں، پتا چل گیا کہ میرا نام ہی سرونٹ ہے، میرا نام ہی عبد ہے، عبد میرا نام ہی امت ہے. اس کا اپوزٹ عورت کے لیے امت ہے نا. تو امت السلام نام رکھتے ہیں، امت الحفیظ نام رکھتے ہیں نا. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب ہی کا مطلب کیا ہے کہ باقی جن کی بھی عبادت کہنا مانتے تھے نا وہ سب کراس ہے، جو شرک کرتے تھے، جو کفر کرتے تھے، اب سب کراس ہے، اب صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب میں کوئی شرک نہیں کروں گی، اب میں غلط کام نہیں کروں گی، شیطان کا کہنا نہیں مانوں گی، نفس کی پوجا نہیں کروں گی، ہے نا. تو اب میں صرف تیرا ہی کہنا مانوں گی. جب سے اعلان محبت کا کیا ہے میں نے، جب سے اعلان محبت کا کیا ہے میں نے، مجھ سے ہر ایک محبت کی نشانی مانگے. یہ ایک عام سا شعر ہے، آپ سب کو آتا ہوگا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. कि जब से ऐलान मोहब्बत का किया है मैंने, मुझसे हर एक मोहब्बत की निशानी मांगे, आपने ये नहीं कहना शेर लिखवाए। ये बात आज पहले दिन याद कर ले, आपने मुझसे रिपीट करने को नहीं कहना, याद करने को नहीं कहना। ख्यालात का एक रिदम होता है, खत्म हो जाता है, और असल चीज तो सबक को फोकस करना है। आगे पीछे मिल गया तो ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मसलन आपने ये सोचा कि मैं आप कुरान कोर्स में दाखिला लेना चाहती हूँ। मुझे एक बहन की बात बड़ी अच्छी लगी, कहने लगी वो, मैं उनसे कहती थी दाखिला ले, कहती थी मैं सोचती हूँ ना, मैं सोच रही हूँ, मैं ले रही हूँ। तो फिर कहती थी अच्छा शायद कुछ कभी आऊं कभी ना आऊं। फिर कहने लगी कि मैं ना बेबी सिटिंग करना चाह रही हूँ। और जिस दिन से कहती है मैंने सोचा ना कि मैंने कोर्स में दाखिला लेना है, लोगों की कॉलें आ रही, मतलब उनके उनको जॉब की ऑफर होने लगे कि तुम आओ और बच्चे हैं, आओ और बच्चे हैं। तो कहने लगी कि फिर उनका मुझे ना कल फोन आया, कल के परसों में खल, बहुत खुश थी। कहने लगी कि मुझे कॉलें बहुत आ रही हैं, लेकिन मेरे शौहर ने ये कहा है कि तुमने तफहीमुल कुरान कोर्स में दाखिला लेना है। और कहने लगी मेरे शौहर ने ये बात कही कि आज ही तुम ना मना, आज ही तुम कोर्स को छोड़ दो, देखो तुम्हें कोई कॉल नहीं आएगी। तुम्हें कॉलें आ ही इसलिए रही हैं कि ये तुम्हारी आजमाइश है। मुझे इतनी अच्छी उसकी बात, यानी सारा दिन मुझ पे इस बात का इतना असर रहा और अब तक है। और मेरा दिल चाहा कि मैं उस अजीम शौहर के बारे में और उस अजीम औरत के बारे में, जो भी है आपकी क्लास में आज भी बैठी हुई है, इस वक्त बैठी हुई है, जो कि वो पहले ऐसे थी कि इरादे बांधती हूँ सोचती हूँ तोड़ देती हूँ, इरादे बांधती हूँ सोचती हूँ तोड़ देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। होता ना दो कश्तियों के मुसाफिर, करें कि ना करें। सुबह की बात, लोगों को देखा नींद आ रही है, जाहिर है इस वक्त मीठी नींद सोते होंगे, है ना, बच्चों को भेजा और सो गए। अब कुछ लोगों को ये चाय, अपनी मीठी मीठी नींद याद आ रही होगी, कुछ को चाय का प्याला, जब सबको भेज कर जो चाय का प्याला पीते थे कितना मजा आता था ना। लेकिन आप सोचिए कि कितना लुत्फ है, कितनी लज्जत है, कितना अजर है कि क्या है कि ईया का नाबुदू, चाय की प्याली भी तेरी मोहब्बत में छोड़ी, और तेरी मोहब्बत में ये जो जब ऑफर्स आ रही थी, जो कॉल आ रही थी, अल्लाह ये नहीं कि आइंदा नहीं कर सकते, आगे पीछे इंशाल्लाह मौका देगा, लेकिन तो असल बात क्या है कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं और करेंगे। असल में यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल किया गया, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही हैं, नाबुदू, तो तीनों माने ही पूरे करने हैं कि वर्शिप भी करना है, ओबीडियंट भी बनना है, और फिर सर्वेंट बन जाना है कि पूरी तरह फिर उसको अमलन करना है जिंदगी के हर शोबे में। तो और दूसरी बात क्या है, वह ईया का नस्ताइन, और तेरी हर हम तुझी से मदद मांगते हैं। तो पूरे कुरान मजीद की जो बुनियाद है ना, जो असल जैसे उम्मुल किताब इस सूरत को कहते हैं, वो सूरत है, इस सूरत की बुनियाद ये आयत है। इस सूरत की बुनियाद जो है ये आयत है, ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन, जिसका ये मतलब है कि तेरी ही इबादत है और तुझी से सब कुछ चाहते हैं, किसी और से नहीं चाहते। मदद, हेल्प, हदायत, मतलब और किसी का रास्ता नहीं, कोई इज्म नहीं, ना कम्युनिज्म चाहते हैं, ना सोशलिज्म चाहते हैं, ना हिंदू मत, कुछ भी नहीं, यानी अल्लाह का बनाया हुआ तरीका, अल्लाह का बनाया हुआ दीन चाहते हैं, तुझी से हम मदद मांगते हैं। और अल्लाह ताला क्या से फिर हम कैसे मांगते हैं, अल्लाह ने हमें क्या सिखाया कि एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि वो बारीक रास्ता जो तलवार की तरह बारीक है और बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार की तरह तेज है, अल्लाह तू हमें, हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा दे मुस्तकीम। और आप देखें कि यहाँ पे हर जगह जो है वो जमा का सीगा है ना, नून है, हम नाबुदू नस्ताईन, हम मांगते हैं, हम इबादत करते हैं, और यहाँ पे भी एहदीना हमको दिखा, यानी अकेले अकेले भी नेक बनना है और इज्तमाही तौर पर भी, इंडिविजुअल तौर पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी, हम सबको जो है वैसीयत एक नेशन के, एक उम्मत मुस्लिमा के, एक नेक बनना है, अच्छा बनना है, तो अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा दे। फिर हम अल्लाह से ये दरख्वास्त करते हैं कि रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने अपना इनाम किया। अल्लाह ताला ने किन लोगों पर अपना जो है वो इनाम किया है, इसके लिए हमें सूरत निसा की आयत 69 से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने खास तौर पर कुछ लोगों पर अपना इनाम किया है। और वो लोग कौन से लोग हैं? वो लोग वो हैं जो के यानी शोहदा हैं, अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं और सालिहीन हैं। तो ये चार किस्म के लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम किया। सूरत निसा की आयत 69 को आप पढ़ लें, नोट कर लें कि उन लोगों का रास्ता अल्लाह ताला हमें दिखा जिन पर तूने अपना इनाम किया। और ये चार किस्म के लोग हैं, गैरिल मगदूबी ना के वो जिन पर तेरा गजब हुआ, वलद दालीन ना के जो गुमराह हुए। ये मगदूब मगदूबी अलैहिम और वलद दालीन से मुराद कौन लोग हैं? बुखारी की हदीस है, हजरत इब्ने हमाम मरफून फरमाते रवायत करते हैं कि मगदूब अलैहिम से मुराद यहूद हैं और वलद दालीन से मुराद नसारा है। मगदूब अलैहिम से मुराद कौन है? यहूद हैं और वलद दालीन से मुराद नसारा हैं। तो ये मगदूब अलैहिम क्यों है? यहूद के इन्होंने जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी इख्तियार की और अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हुए। पर आप देख लें कि मूसा अलैहिस्सलाम और बहुत से अंबिया जो बनी इसराइल में आए तो क्या क्या इनकी तरफ से था, और इन्होंने जैसे बात को तोड़ मड़ोड़ कर किया। और जो ईसाई हैं इनके बारे में क्या है कि इन्होंने इन्होंने अफराद किया तो उन्होंने तफरीद की। यहूदी आगे बढ़े अल्लाह की हदों में तो ये पीछे हटे, मसलन रहबानियत इख्तियार कर ली, ईसाइयों में रहबानियत है ना कि जो जायज चीजें थी वो भी इन्होंने छोड़ दी। तो ये भी एक गुमराही है कि जो हलाल है उसको भी बहुत ज्यादा नेक बनने के लिए इंसान छोड़ दे, तो अल्लाह ताला को ये चीज जो है ये पसंद नहीं है। तो ये जब वलद दालीन हम कहते हैं, इस सिलसिले में हमें हदीस मिलती है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई इसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ कर दिए गए। ये बुखारी की हदीस है। तो इसीलिए आप देखती हैं कि जब नमाज भी होती है तो उस वक्त आमीन जो है वो कहा जाता है। तो हमने सूरत अल-फातिहा में खास चीज जो बात कही क्या सीखी, वो क्या सीखी कि अल्लाह की हम्द अल्लाह की तारीफ के साथ साथ हमें ये बात पता चली, यानी ये तौहीद का अकीदा पता चला, ठीक है ना। अल्लाह की हम्द और तारीफ अल्लाह और तौहीद का अकीदा है, और मालिक यौमिद्दीन डे ऑफ जजमेंट ये कयामत का अकीदा है। फिर हमने साथ ही ये बात कही कि उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, तो अंबिया का रास्ता है ना। तो गोया के सूरत अल-फातिहा जो है ये बुनियाद हमें बनाती है और हमें ये सिखाती है कि हमें अल्लाह ही से मांगना चाहिए। जूते का तस्मा भी टूट जाए या कोई बड़ी से बड़ी जरूरत हो तो अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको अमल की बेहतरीन तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।